पृष्ठ संख्या 160, विभिन्न वर्गों की भूमिका, रोल ऑफ वेरियस क्लॉज। विभिन्न वर्गों की भूमिका, रोल ऑफ वेरियस क्लासेस। राष्ट्रवाद की उठती लहर ने कई उभरते नए वर्गों को प्रभावित किया और फिर उनसे स्वयं भी प्रभावित हुई। वाणिज्यिक बुर्जुआ वर्ग अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों द्वारा स्वयं से किए जाने वाले भेदभाव के लिए मांचू सरकार को उत्तरदायी मानते थे और इसी कारण वे छिंग विरोधी शक्तियों से सहानुभूति रखते थे। इसके अतिरिक्त 5 नए उभरते सामाजिक वर्ग थे, युवा वर्ग तथा छात्र, नए सैनिक, युवा महिलाएं, प्रवासी चीनी तथा सर्वहारा वर्ग, जिन्होंने छिंग विरोधी आंदोलन के भाग को पूरी शक्ति से क्रांतिकारियों के पक्ष में परिवर्तित कर दिया। जैसा कि मेरी रेनकिन ने कहा है, प्रारंभ में विदेशों से लौटे भद्रजन पृष्ठभूमि के उन युवा अराजकतावादियों विप्लवकारियों ने जो क्रांतिकारी भावुकता तथा विरोचित आत्मबलिदान के विचारों से सराबोर थे, गांवों में क्रांति भड़काने का प्रयास किया। युवतियों तथा युवा महिलाओं ने साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेकर तथा फुचोऊ में देशभक्त समाज, पैट्रियोटिक सोसाइटी जैसी संस्थाएं बनाकर प्रमुख भूमिका अदा की। वुछांग विद्रोह के दौरान निम्नतम पद की नई सेनाओं ने विद्रोह में अपनी भूमिका अदा की तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विद्रोह में हिस्सा लेने को बाध्य किया। प्रवासी चीनी धन की आपूर्ति द्वारा तथा अपने अखबारों के प्रभाव के कारण एक अन्य क्रांतिकारी शक्ति बन गए, एक अन्य माध्यम जिसने तथाकथित रूप से गतिहीन कृषकों को नए विचारों से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था, वह था गरीब कृषकों की नए उद्योगों में भर्ती। बुर्जुआ वर्ग 19वीं शताब्दी के अंत तक विदेशी व्यापार तथा संधि बंदरगाह व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चीन में एक नया वर्ग, वाणिज्यिक बुर्जुआ वर्ग विकसित हो चुका था। जैसा कि मेरी क्लेयर बर्गेयर ने कहा है, वाणिज्यिक बुर्जुआ वर्ग एक समूह था जिसमें आधुनिक कार्यपद्धति के उद्यमी, व्यवसायी, वित्त प्रबंधक तथा उद्योगपति थे। ए ग्रुप कंप्राइजिंग एंटरप्रेनर्स इन द मॉडर्न स्टाइल बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। चीनी भाषा तथा परंपराओं का ज्ञान न होने तथा चीनी वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती निर्भरता के कारण विदेशियों ने परोक्ष रूप से इन नए वर्गों के विकास में सहयोग दिया। यद्यपि यह वर्ग संगठित नहीं था, तथापि यह पश्चिमी वाणिज्यिक गतिविधियों द्वारा प्रारंभ किए गए तथा कथित मिथ्या आधुनिकीकरण, फल्स मॉडर्नाइजेशन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी अंग था। परंतु फिर भी बुर्जुआ वर्ग अन्य वर्गों से भिन्न था, जिसका आधार था उनकी नैतिक श्रेष्ठता, वाणिज्य मंडल जैसे आर्थिक संगठनों के प्रति निष्ठा तथा उनके विचार एवं तौर तरीके जो पश्चिमी विचारों एवं परंपराओं से प्रभावित थे। साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के कारण राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का अवश्यंभावी रूप में उनसे टकराव हुआ, ताकि यह वर्ग अपना अस्तित्व बचा सके एवं विकास कर पाए। इस राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग की यह स्वाभाविक आवश्यकता थी कि यह साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद दोनों का विरोध करे। परंतु चूंकि यह वर्ग इन दोनों में से कई रूपों में जुड़ा था, इसलिए यह इनके विरुद्ध पूर्ण संघर्ष नहीं कर सकता था, और किसी भी स्थिति में यह वर्ग किसी विचारधारा से जुड़कर सीधी राजनैतिक कार्यवाही करने में विश्वास नहीं करता था। इसका कारण विशेष तौर पर मनोवैज्ञानिक था, क्योंकि वे सामाजिक अलगाव के विचार से परेशान थे और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, एवं सार्वजनिक गतिविधियों में उन्हें हिस्सा लेने की मनाही थी। इस वर्ग ने क्रमिक रूप में एक नई आत्मचेतना के साथ नई राजनीतिक प्रवृत्तियां अपना ली, जो बहुत हद तक उन अनुभवों से उभरी थी जो उन्हें छिंग अधिकारियों तथा पश्चिमी व्यवसायियों के साथ कारोबार करने के कारण मिली थी। सरकार विदेशी अतिक्रमण के विरुद्ध उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही तथा जो विशेषाधिकार उन्हें प्रदान किए गए थे, वे प्रशासनिक व्यवस्था के टूट जाने के कारण अप्रभावी हो गए थे। कर व्यवस्था के कारण व्यापारी निवेश करने में हिचकते थे कि कहीं सरकारी अथवा कार्यालयों की नाहक बलपूर्वक वसूली न शुरू हो जाए। सामाजिक सर्वेक्षण तथा व्यापारिक प्रबंधन, सोशल सुपरविजन एंड मर्चेंट मैनेजमेंट, की व्यवस्था द्वारा औद्योगिकरण के प्रयास के उद्योगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें निष्प्रभावी कर दिया, क्योंकि अधिकारी वर्ग अपने रवैये में बिल्कुल ही गैर व्यवसायिक तथा सामंती था। सरकार का वित्तीय ढांचा भी उतना ही असहायक था। न तो कोई एकीकृत मुद्रा थी, न बजट व्यवस्था, और न ही आम जमा खर्च हिसाब का कोई संगठन था। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि व्यापारियों द्वारा स्थानीय अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों जो वे कभी-कभी स्थापित करने में सफल हो जाते थे के बावजूद साम्राज्यिक सरकार के प्रति अविश्वास तथा विरोध के भाव व्याप्त हो जाएं। इन सबसे बढ़कर समाज तथा सामाजिक मूल्यों का कन्फ्यूशनवादी ढांचा किसी भी तरह आधुनिक उद्यमी वर्ग के विकास के लिए सहायक नहीं थे। व्यापारी वर्ग को सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले डंडे पर रखा गया तथा इस वर्ग के सदस्य अपना पैदाइशी गुनाह ओरिजिनल सीन केवल अधिकारी वर्ग या भद्र वर्ग में प्रवेश प्राप्त करके ही मिटा सकते थे। अधिकांश छिंग अधिकारी आधुनिक उद्योग को या तो कुटिल दृष्टि से देखते थे या फिर अधिक से अधिक इसे रुपये ऐंठने का एक अन्य स्रोत मानते थे। इतना ही नहीं, एक ऐसे समय में जब विदेशी व्यापारी अपनी साधन संपन्नता, श्रेष्ठ तकनीक तथा विशिष्ट स्थिति के कारण चीन के नवजात उद्योगों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहे थे, नपुंसक छिंग सरकार चीनी व्यापारियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। चीनी व्यापारियों के लिए एक अन्य बाधा थी अपर्याप्त पूंजी। सरकार जो स्वयं दिवालिया थी, अपने व्यापारियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने में असमर्थ थी। इसके विपरीत छिंग दरबार ने उद्योगों से वित्तीय मांग की। कन्फ्यूशनवादी नैतिक तथा अनुदारवादी अतीत से बाहर निकलने के प्रति सरकार की उदासीनता की नीति तथा साथ ही आधिकारिक लूट ने छिंग नीतियों के प्रति व्यापारियों को संदिग्ध बना दिया। अपने दैनिक जीवन में उन्हें जिस आधिकारिक लोभ तथा अयोग्यता का सामना करना पड़ता था, उससे उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया था कि आमतौर पर सरकार उनकी सहायता नहीं करेंगी। और यहाँ तक कि उन्हें उत्पादन और आधुनिक संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, विश्व के किसी भी देश के विपरीत उन्हें विदेशियों की तुलना में अधिक करों का भुगतान करना पड़ता था। चूंकि वे व्यापार में लगे हुए थे, इसलिए वे चीन के शोषण से सर्वाधिक अवगत थे, जिसने निश्चित रूप से उनके अंदर संवेदनशील राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा किया होगा। एक उद्योगपति के लिए न केवल स्थानीय एवं प्रांतीय नौकरशाही द्वारा अपितु स्वयं पेचिंग द्वारा तबाह और परेशान किया जाना सामान्य बात थी। आधुनिक उद्योग के विकास में आधिकारिक हस्तक्षेप तथा बलपूर्वक धन वसूली का भय एक गंभीर बाधा था। अतः बुर्जुआ वर्ग का धैर्य समाप्त हो गया। तो उन्होंने मांचू राजवंश के समाप्ति के उद्देश्य से क्रांतिकारियों के लिए अपने कोष खोल दिए। जैसा कि मेरी सी राइट कहती है, उनके इस कदम का मूल उद्देश्य एक दृढ़ केंद्रीय सरकार का निर्माण करना था, जो विदेशियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर सके तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सके जिनमें राष्ट्रीय बाजार विकसित हो सके। द बेसिक पर्पस ऑफ सच ए मूव वॉज टू ब्रिंग अबाउट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विच कुड एंड स्पेशल फॉरेन प्रिविलेज एंड प्रोवाइड द कंडीशन इन विच ए नेशनल मार्केट कुड डेवलप। वीपी दत्त के शब्दों में, यद्यपि व्यापारी न तो क्रांतिकारी विद्रोहों को उकसाने में और न ही उनका दिशा निर्देश करने में शामिल थे, तथापि किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न न होने देकर उन्होंने क्रांति को इसके समापन में सहायता प्रदान की। 1911 की क्रांति में बुर्जुआ वर्ग की भूमिका किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी, क्योंकि उसने आयातित विचारधारा तथा चीनी परिस्थितियों के वास्तविक तथ्यों के मध्य एक कड़ी पैदा की। परंतु चूंकि यह कड़ी कमजोर थी और बुर्जुआ वर्ग एक वर्ग के रूप में अभी तक पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर सका था, इसलिए इसकी भूमिका एक सहायक की ही हो सकती थी। छन थिए चियन ने बुर्जुआ वर्ग की भूमिका को इस शब्दों में व्यक्त किया है, यद्यपि बुर्जुआ वर्ग में स्वाभाविक अंतर्निहित दोष तथा दुर्बलताएं थी, तथापि यही एकमात्र प्रगतिशील शक्ति था जो सापेक्षतया परिपक्व था। यह मुश्किल से एक क्रांति का प्रारंभ करने तथा उससे नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में था। पृष्ठ संख्या 163। नए सैनिक, द न्यू सोल्जर्स। शासक घराने की परंपरागत सेना का इतना पतन हो चुका था कि उसका उद्धार नहीं किया जा सकता था। अयोग्यता, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, अफीम की लत तथा वर्षों की जड़ता ने पताका सेना, बैनर ट्रूप्स को पूर्णतया नपुंसक बना दिया था। बढ़ते हुए विदेशी संकट तथा आंतरिक असंतोष ने जब छिंग शासनों को मजबूर किया तो उन्होंने एक नई आधुनिक कार्य पद्धति की सेना बनानी पड़ी। यद्यपि पुरानी सेना किसी भी काम की नहीं थी तथापि उसे भंग नहीं किया गया। चीनी सरकार अपने लगभग 1.2 करोड़ ताइलो के सार्वजनिक राजस्व का आधा भाग केवल सैन्य तंत्र पर ही खर्च कर रही थी, जिसमें से एक बड़ा भाग पुरानी सेना पर खर्च हो रहा था। इस प्रकार एक ऐसे समय में जब चीन कमरतोड़ आर्थिक दबाव में डूब रहा था, तब पुरानी सेना एक अनावश्यक वित्तीय बोझ बन गई थी। मांचुओं ने अपने सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास भी उल्टे पड़ गए थे। सबसे पहली बात तो यह है कि साम्राज्यवाद एवं आधुनिकीकरण साथ साथ नहीं चल सकते। विदेशी चीन में केवल शांति बनाए रखने के इच्छुक थे ताकि उनका व्यापार अबाध गति से चलता रहे। वे चीन को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनने में सहायता करने के इच्छुक नहीं थे। दूसरा, चूंकि बिना उद्योगीकरण के वास्तविक अर्थ में एक आधुनिक सेना एक मिथ्या परिकल्पना है, इसलिए बिना औद्योगिक मशीनों के चीन युद्धों के साधनों तथा आधुनिक सेना का बोझ उठा सकने वाली एक अस्थायी अर्थव्यवस्था का संभरण नहीं कर सकता था। तीसरा, नई सेना के सामान्य सैनिकों में क्रांतिकारी विचारों की घुसपैठ मांचुओं की मृत्यु का आमंत्रण साबित हुई। नई सेना में क्रांतिकारी अत्यधिक सक्रिय थे तथा नए सैनिक अपने कमांडर के प्रति निष्ठा रखते थे, न कि मांचू सिंहासन के प्रति। प्रशिक्षण हेतु जापान गए सैन्य शिक्षार्थी नए विचारों के साथ साथ मांचुओं के शासन में राष्ट्रीय अपमान के प्रति गहरी शर्म की भावना से भी प्रभावित हुए। इसी प्रकार सेना में युवा सैन्य शिक्षार्थी सरलता से उन क्रांतिकारियों से प्रभावित हो गए जो जापान में खास तौर पर 1900 से 1907 ईस्वी के दौरान अत्यधिक सक्रिय थे। उन्होंने तत्परतापूर्वक क्रांतिकारी प्रचार के जवाब में काम किया तथा प्रबुद्ध साहित्यकारों, संपन्न व्यापारियों तथा आधुनिक बुद्धिजीवियों के विकासोन्मुख राष्ट्रवाद के प्रति अपने संवेदना व्यक्त। वाई हतानों के शब्दों में, नई सेनाओं ने कृषक असंतोष को सफलतापूर्वक एक संगठित क्रांतिकारी रूप दे दिया। जब अक्टूबर 1911 ईस्वी में वुछांग में विद्रोह की तोपें गूंजी तो नए सैनिकों ने साम्राज्यिक दरबार की रक्षा के स्थान पर उसे उखाड़ फेंकने के अभियान में हिस्सा लिया।